آج کل
प्रिय श्रोतागण, कार्यक्रम आजकल को लेकर उपस्थित हैं स्वाति और कायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में खतरनाक आतंकवादी गुट दाइश के गठन और उसकी गतिविधियों के बारे में चर्चा करेंगे।
पिछले दो दशकों के दौरान पूरे विश्व, विशेषकर मध्य पूर्व में आतंकवाद का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमेरिका की ओर से दाइश विरोधी व्यापक अभियान चलाने के बावजूद दाइश का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस घटना के पीछे की कहानी है क्या।
अमेरिका में घटने वाली 11 सितंबर सन 2001 की घटना को अमेरिकी विदेश नीति में मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष के बहाने आक्रामक रूप अपनाते हुए अफगानिस्तान और इराक पर हमले कर दिए। अमेरिकी हमले के बाद इराक का अधिग्रहण कई आतंकवादी गुटों के गठन की भूमिका बना, जिसमें एक दाइश भी है।
दाइश ने इराक और सीरिया में जघन्य अपराध अंजाम दिए। दाइश के अपराधों और अत्याचारों ने मध्ययुगीन शताब्दियों की याद ताज़ा करा दी। दूसरी ओर सीरिया में सन 2011 में आरंभ होने वाली अशांति का दुरुपयोग करते हुए अमेरिका ने सीरिया की सरकार को गिराने के लिए कई सशस्त्र गुटों का समर्थन किया, जिनमें दाइश भी शामिल था। बशार असद की वैध सरकार को गिराने के लिए अमेरिका ने आतंकवादी गुट दाइश को विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाईं।
अमेरिका की दृष्टि में आतंकवाद के दो रूप हैं। अमेरिका ने आतंकवाद जैसी बुराई को आरंभ में ही दो हिस्सों में बांट दिया था, अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार अच्छा आतंकवाद और अच्छे आतंकवादी वे हैं जो अमेरिका और उसके घटकों हितों की पूर्ति के लिए मारकाट करें। इन हितों को पूरा करने के लिए आतंकवादी अत्याचार और हिंसा की किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इस प्रकार की हिंसक कार्रवाइयां करने के बावजूद वे वॉशिंगटन की नज़र में अच्छे आतंकवादी माने जाएंगे। अब चूंकि सीरिया में दाइश अमरीकी हितों की पूर्ति के लिए काम कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अमेरिका की नज़र में अच्छा एवं उपयोगी गुट था। इसलिए व्हाइट हाउस के अनुसार वह अच्छे आतंकवाद का हिस्सा है।
दूसरी ओर वे लोग हैं जो अमरीकी वर्चस्व और उसके हितों के विरोध में कदम उठाते हैं, वे बुरे आतंकवादी माने जाते हैं। वे लोग और गुट जो अमरीका तथा उसके घटकों जैसे इसराइल के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं, वे बुरे आतंकवादियों की सूची में चले जाते हैं। इस अमरीकी परिभाषा के हिसाब से हिजबुल्ला, अंसारुल्ला, हमास और जिहाद इस्लामी जैसे प्रतिरोधी संगठन बुरे आतंकवाद की लिस्ट में ही रहेंगे। यही कारण है कि आतंकवाद के बारे में अमरीका, विशेषकर वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के क्रियाकलापों में खुला विरोधाभास पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप, आतंकवादी गुटों और आतंकी प्रक्रिया को आर्थिक सहायता पहुंचाने वाले देश सऊदी अरब को ट्रंप का खुला समर्थन प्राप्त है, जबकि यही अमरीका आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के बारे में आए दिन बयान देता रहता है।
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आतंकवाद के संदर्भ में अमरीकी नीतियों और व्यवहार में खुला विरोधाभास पाया जाता है। इस बारे में एक राजनीतिक टीकाकार इवान इपोलितोव का कहना है कि हालिया वर्षों में अमरीका का लक्ष्य आतंकवाद और अतिवाद का प्रयोग करके पश्चिमी एशिया के देशों को कमजोर करना है, ताकि वहां पर अतिवाद अधिक फैल सके। वास्तविकता यह है कि आतंकवाद के विस्तार का प्रमुख कारण उसके बारे में अपनाया जाने वाला दोहरा मापदंड है। ऐसे में यह बात कही जा सकती है कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देश जब तक यह देखते हैं कि उनके हितों को बाकी रखने में अतिवाद प्रभावित सिद्ध होगा, उस समय तक संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवाद व आतंकवाद को रोका नहीं जा सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे वॉशिंगटन और रियाज ने परस्पर सहयोग से आतंकवादी गुट दाइश को अस्तित्व दिया।
सन 2011 और उसके बाद अरब जगत में जन आंदोलनों के फूट पड़ने के बाद पैदा हुए हालात के कारण कुछ देशों में अतिवाद और आतंकवाद की भूमिका अधिक प्रशस्त हुई। यह विषय सीरिया में अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई दिया। इस विषय ने सीरिया में दाइश जैसे क्रूर आतंकवादी गुट को फलने फूलने में अधिक सहायता की। इसी बीच पश्चिमी देशों और उनके अरब घटकों ने अपने हितों को साधने तथा अपने दृष्टिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के स्थान पर आतंकवादी गुटों विशेषकर दाइश के समर्थन की नीति निर्धारित की। इन देशों ने ऐसे आतंकवादी गुट का हर प्रकार से समर्थन किया जिसने सीरिया एवं इराक में खुलकर हिंसक और अमानवीय कार्रवाइयां अंजाम दीं।
सन 2011 में अरब देशों में आरंभ होने वाले जन आंदोलनों से उत्पन्न हुई अशांति के दौरान दाइश ने सीरिया में जन्म लिया। इसका आरंभ तो इराक में बास पार्टी के बचे खुचे तत्वों और तकफीरी आतंकवादियों के मिश्रण से हो चुका था, किंतु बाद में संसार में फैले हुए इनके तत्वों ने सीरिया में एकत्रित होकर निसंकोच रूप से हिंसक एवं अमानवीय कार्रवाइयां आरंभ कर दी। सीरिया संकट के आरंभ से ही अमेरिका ने पश्चिम के ठेकेदार के रूप में अपने पश्चिमी घटकों के साथ मिलकर अपने दृष्टिगत अच्छे आतंकवादियों अर्थात दाइश और उसकी विचारधारा से मेल खाने वाले गुटों का व्यापक समर्थन किया। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिम का लक्ष्य सीरिया की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटना था। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पश्चिम ने खुलकर आतंकवादी गुटों का प्रयोग किया।
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान एक भाषण में ये बात स्वीकार की थी कि दाइश को अस्तित्व देने में अमेरिका का ही हाथ रहा है। उनके अनुसार दाइश को बनाने में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन की भूमिका रही है। ट्रंप ने जनवरी 2016 में कहा था कि वे अर्थात ओबामा और क्लिंटन झूठे हैं जिन्होंने दाइश को जन्म दिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ने ही दाइश जैसे आतंकवादी गुट को बनाया है।
ट्रंप का यह बयान रूस के राष्ट्रपति सहित विश्व के कुछ नेताओं की इस बात की पुष्टि करता है जिसमें दाइश के गठन में व्हाइट हाउस की भूमिका की ओर संकेत किया गया है। विभिन्न देशों विशेषकर रूस ने अलग अलग अवसरों पर यह कहा है कि अमेरिका दाइश का समर्थक रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह चुके हैं कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका और पश्चिम की वर्चस्ववादी कार्रवाइयां इस क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने का कारण बनी है। यह एक वास्तविकता है कि अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ही व्यावहारिक रूप में दाइश को मजबूत करने में सहायता की है।
विडंबना यह है कि वर्तमान समय में अमेरिका तथा कथित दाइश विरोधी अंतर्राष्ट्रीय अभियान का मुखिया बना हुआ है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। सीरिया में अमेरिकी क्रियाकलाप दर्शाते हैं कि सन 2011 से 2014 के बीच अमेरिका ने दाइश की बहुत सेवा की। ये वो काल है जब दाइश का नियंत्रण इराक के भी कुछ क्षेत्रों पर हो चुका था। सन 2014 में दाइश विरोधी तथा कथित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के गठन के बाद भी अमेरिका का लक्ष्य दाइश जैसे आतंकवादी गुटों की सुरक्षा करना रहा। इसका मुख्य लक्ष्य दाइश को सीरिया की सरकार और उसके घटकों के विरुद्ध प्रयोग करना था।
जानकारों का कहना है कि सन 2015 में ऐसे कई अवसर थे जब अमेरिका ने विमान या हेलीकॉप्टरों के माध्यम से इराक में दाइश को हथियार पहुंचाए। यह बात इस हद तक सही है कि कुछ अमरीकी पायलटों ने भी बताया है कि कई बार ऐसा हुआ कि वे दाइश के आतंकवादियों और उनके ठिकानों को बड़ी सरलता से निशाना बना सकते थे, किंतु उनको इस बात की अनुमति नहीं दी गई। उनके अधिकारियों ने उन्हें ऐसा करने से मना किया था।
इसका एक स्पष्ट उदाहरण सीरिया के पालमीरा नगर पर दाइश का कब्जा है। जब सीरिया की सेना ने हलब को स्वतंत्र करा लिया और वे तेजी से आगे की ओर बढ़ रहे थे, ऐसी स्थिति में अमरीका की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद दाइश ने पालमीरा पर नियंत्रण कर लिया। इस घटना ने सिद्ध कर दिया कि अमेरिका और दाइश के बीच समन्वय पाया जाता है। अमेरिका की ओर से दाइश के समर्थन की एक अन्य मिसाल यह है कि सितंबर सन 2016 में सीरिया के दैरुजूर क्षेत्र में सीरिया की सेना पर दाइश के आतंकवादियों के हमले से पहले अमरीकी विमानों ने सीरिया के सैन्य ठिकानों को लक्ष्य बनाया, जिसके बाद दाइश ने हमला कर दिया।
केवल सीरिया और इराक में ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में भी अमेरिका दाइश को मजबूत बना रहा है। रूस ने कई बार इस बात पर आपत्ति जताई है कि अमेरिका अफगानिस्तान में खुलकर दाइश की सहायता कर रहा है। इस बारे में रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा ने कहा है कि हमें जो पुष्ट रिपोर्टें मिली हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि अमेरिका और नेटो अफगानिस्तान में दाइश की शाखा की सहायता कर रहे हैं। इस संदर्भ में अज्ञात हेलीकॉप्टरों द्वारा दाइश के आतंकवादियों को अफगानिस्तान में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और उनके लिए हथियारों की आपूर्ति जैसी बातों का उल्लेख किया जा सकता है।
इस हिसाब से मॉस्को का मानना है कि ऐसे में अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के वास्तविक लक्ष्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। जिस प्रकार से दाइश अफगानिस्तान के भीतर फैलते चले जा रहे हैं उससे इस बात का भय उत्पन्न हो गया है कि दाइश केंद्रीय एशिया के देशों तक अपनी पहुंच बना लेगा जहां से वो रूस का रुख कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है।
रूस की केंद्रीय कमान के कमांडर अलेक्जेंडर लेपिन ने दाइश की पराजय के बाद इस गुट के आतंकवादियों के अन्य देशों की ओर जाने के बारे में कहा है कि दाइश ने केंद्रीय एशिया के देशों पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रखा है। उन्होंने कहा है कि हमारी जानकारी के हिसाब से अफगानिस्तान में इस समय लगभग 10,000 आतंकी मौजूद हैं जिनमें अधिकांश दाइश के आतंकवादी हैं। ये आतंकवादी केंद्रीय एशिया के देशों में तथाकथित खिलाफत की स्थापना करना चाहते हैं। रूसी कमांडर का कहना है कि वर्तमान में 5,000 आतंकी उत्तरी अफगानिस्तान में मौजूद हैं। अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसी देशों में अस्थिरता और अशांति उत्पन्न करने के लिए वाशिंगटन ने युद्धग्रस्त इस देश में भी दाइश के समर्थन को अपनी कार्यसूची में सर्वोपरि रखा है।
अमेरिका की ओर से दाइश विरोधी गठबंधन का नेतृत्व करने के दावे के बावजूद यह सिद्ध हो गया है कि अमेरिका का यह दावा झूठा है। वास्तव में दाइश को बनाने और उसको फैलाने में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विशेष बात यह है कि दाइश विरोधी तथा कथित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के गठन से पहले योजना ये थी कि दाइश को सीमित कर दिया जाए और जब भी उसकी ज़रूरत हो तो उसका वहां पर प्रयोग किया जाए।